तीसरा, शैलेंद्र साम्राज्य का उत्थान। जब यह भी सुनिश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका हो कि शैलेंद्र वंश के राजाओं की राजधानी कौन सी थी और उन्होंने किस स्थान को केंद्र बनाकर अपनी शक्ति का विस्तार किया, तो उनके क्रमबद्ध इतिहास को लिख सकना एक असंभव बात ही है। पर बहुसंख्यक विद्वानों को यह मत ही स्वीकार है कि शैलेंद्र राजाओं की राजधानी श्रीविजय सुमात्रा में थी और उसी को केंद्र बनाकर उन्होंने अपने साम्राज्य का निर्माण किया था। इन राजाओं के संबंध में जो भी सूचनाएं अभिलेखों तथा अरब और चीनी विवरणों से उपलब्ध है, उनका विवरण ऊपर किया जा चुका है। उनके आधार पर शैलेंद्र साम्राज्य के उत्थान का जो चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, उसे संक्षेप के साथ इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। 7वीं सदी के श्री विजय के राज का उत्कर्ष प्रारंभ हो गया था और पड़ोस के अन्य राजाओं को जीतकर उसने अपने साम्राज्य का निर्माण शुरू कर दिया था। इसीलिए प्लेमबग के दूसरे अभिलेख और जाम्बी के अभिलेख में श्री विजय के अधीनस्थ प्रदेशों के निवासियों को यह चेतावनी दी गई है कि यदि वे विद्रोह का विचार भी मन में लाएंगे तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। इन अभिलेखों का उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। सुमात्रा के विविध प्रदेशों के अतिरिक्त बंक द्वीप पर भी 7वीं सदी में ही श्री विजय का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। 686 ईस्वी में श्री विजय की सेनाओं ने जावा पर भी आक्रमण किया था। श्री विजय के 7वीं सदी के इन प्रतापी राजाओं में एक श्री जयनाश या श्री जयनाग था, जिसका नाम प्लेमबंग से उपलब्ध प्रथम लेख में आया है, जहां उसके सुकृत्यों का उल्लेख किया गया है। 8वीं सदी में श्री विजय राज्य का और अधिक उत्कर्ष हुआ और मलाया प्रायद्वीप भी उसकी अधीनता में आ गया। लिगोर मलाया से प्राप्त जिस अभिलेख में श्री विजय नृपति या श्री विजयेंद्र भूपति द्वारा 3 बौद्ध चैत्यों के निर्माण का उल्लेख है, उसके संबंध में इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। यह अभिलेख 775 ईस्वी का है, जिससे इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि 8वीं सदी के मध्य भाग तक मलाया पर भी श्री विजय का आधिपत्य स्थापित हो गया था। मलाया को अपनी अधीनता में लाने वाले श्री विजय के ये राजा शैलेंद्र वंश के थे। यह भी लिगोर प्रस्तर खंड के दूसरे पार्श्व पर उत्कीर्ण अभिलेख से प्रमाणित होता है, जहाँ की शैलेंद्र वंश प्रभु विष्णु नामक राजाधिराज का उल्लेख है। सेदे ने इसी अभिलेख के आधार पर श्री विजय के राज्यों को शैलेंद्र वंश का माना है। 7वीं सदी का अंत होने से पहले ही श्री विजय की सेनाओं ने जावा पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए थे और 8वीं सदी में यह द्वीप अवश्य ही उसकी अधीनता में आ गया था। जावा के कालसन गांव में 778 ईस्वी का जो अभिलेख मिला है, उसमें शैलेंद्र वंश के महाराज पणंकरण द्वारा अपने गुरु के सम्मान में तारा मंदिर के निर्माण तथा कालस नामक गांव को बौद्ध संघ के लिए दान में दिए जाने का उल्लेख है। कालसन के इस अभिलेख से यह भली भांति प्रकट हो जाता है कि 778 ईस्वी तक जावा भी शैलेंद्रों के प्रभुत्व में आ चुका था। कालसन के अभिलेख में जावा में तारा मंदिर का निर्माण कराने वाले जिस शैलेंद्र वंशी राजा महाराजा पणंकरण का उल्लेख है, क्या वह श्री विजय का भी राजा था? इस संबंध में एक मत यह है कि शैलेंद्र राजाओं ने जावा की विजय कर वहां एक पृथक राजवंश को स्थापित कर दिया था, जो संभवतः श्री विजय के शैलेंद्र सम्राटों के आधिपत्य को स्वीकार करता था। महाराजा पणंकरण का 778 ईस्वी में जावा पर शासन था और लगभग इसी समय 775 ईस्वी में लिगोर मलाया पर भी विजेंद्र भूपति शासन कर रहा था, जिसने भी वहां 3 बौद्ध चैत्यों का निर्माण कराया था। लिगोर के शासक इस श्री विजेंद्र भूपति का नाम राजाधिराज विष्णु था और संभवतः महाराज पणंकरण इस राजाधिराज के प्रभुत्व को स्वीकार करता था। शैलेंद्र वंश के शक्तिशाली राजा केवल सुमात्रा मलाया जावा और उनके समीप वर्ती द्वीपों को ही अपने आधिपत्य में लाकर संतुष्ट नहीं हो गए। सुदूर पूर्व में उन्होंने कंबोज कंबोडिया और चंपा वियतनाम या अनाम के भारतीय राज्यों पर भी आक्रमण किया। चंपा के राजा सत्यवर्मा 774 ईस्वी के शासनकाल में जावा की जल सेना ने उसे आक्रांत किया और वहां धन जन का बुरी तरह विनाश किया। राजा सत्यवर्मा के पू नगर के अभिलेख में जावा के इन आक्रांताओं को कृष्ण रुच पुरुष और कालोग्रपात्मक कहा गया है। इन्होंने जहाजों द्वारा चंपा पर आक्रमण किया था और वहां के मंदिर को आग लगाकर मुखलिंग को वहां से उठा ले गए थे। चंपा की अनुश्रुति के अनुसार इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग के 5911वें वर्ष में राजा विचित्र सगर द्वारा कराया गया था। सत्यवर्मा ने अपने वीर सैनिकों के साथ जावा के आक्रांताओं का पीछा किया और सामुद्रिक युद्ध में उन्हें परास्त किया, पर शिव की मुखलिंग मूर्ति को वह प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि आक्रांताओं ने उसे नष्ट कर दिया था। सत्यवर्मा ने जावा के सैनिकों द्वारा विनिष्ट मंदिर का पुनरुद्धार किया और उसमें मुखलिंग शिव की नई मूर्ति प्रतिष्ठापित की, पर जावा के चंपा पर आक्रमण बाद में भी जारी रहे। सत्यवर्मा के पश्चात इंद्रवर्मा चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। उसके शासनकाल में 787 ईस्वी में जावा की जल सेना ने चंपा पर पुनः आक्रमण किया और वहां एक अन्य प्राचीन मंदिर भद्राधिपतीश्वर को विनष्ट किया। यह मंदिर भी बहुत पुराना था और चंपा की अनुश्रुति के अनुसार इसका निर्माण हजारों सालों पूर्व हुआ था। जावा के आक्रांताओं को परास्त कर इंद्रवर्मा ने मंदिर का पुनः निर्माण कराया और उसमें इंद्र भद्रेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठापित की। यद्यपि जावा के आक्रांता चंपा पर स्थायी रूप से अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सके, पर सुदूर पूर्व के उस देश में जाकर वहां के मंदिरों को नष्ट करना कोई साधारण बात नहीं थी। इससे प्रकट होता है कि जावा की सामुद्रिक शक्ति बहुत अधिक थी। 8वीं सदी में जावा पर शैलेंद्र वंश के राजाओं का ही शासन था, अतः चंपा के जिन अभिलेखों में जव बल जावा की सेना द्वारा किए गए आक्रमणों का उल्लेख है वे जावा पर शासन करने वाले शैलेंद्र राजाओं द्वारा ही किए गए थे। यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है जावा के शैलेंद्र राजाओं ने चंपा के समान काम्बुज पर भी आक्रमण किए और उस पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में ही काम्बुज जावा का वशवर्ती हो गया था। जावा के राजा संजय के 732 ईस्वी के एक अभिलेख में यह कहा गया है कि उसने पड़ोस के राजाओं को जीतकर अपने अधीन किया था। कौन से राजा संजय द्वारा परास्त किए गए थे यह उसके अभिलेख से स्पष्ट नहीं होता, पर पर हनगन नामक एक ग्रंथ में उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्हें सेन या सन्नाह के पुत्र राजा संजय द्वारा विजय किया गया था। इन राज्यों में कमीर, खमेर और बारस के नाम भी हैं। कमीर या खमेर कंबोज देश के निवासियों का ही नाम था। कंबोडिया में स्तोग काक थाम नामक स्थान पर उपलब्ध एक अभिलेख के अनुसार इंद्रपुर के राजा जय वर्मा द्वितीय ने एक धार्मिक अनुष्ठान इस प्रयोजन से किया था कि काम्बुज देश फिर कभी जावा के पर्वत में न आने पाए। स्तोक का काक थाम का विलेख संस्कृत और खमेर दोनों भाषाओं में है और उसमें 1052 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया गया था, पर उसमें जिस राजा जयवर्मा का उल्लेख है उसका शासनकाल 802 से 869 ईस्वी तक था। इस अभिलेख से यह स्पष्ट है कि जयवर्मा के शासनकाल से पूर्व 8वीं सदी में काम्बुज पर जावा का प्रभुत्व रह चुका था। काम्बुज पर जावा के शैलेंद्र राजाओं ने आक्रमण किए थे इसका संकेत अरब व्यापारी सुलेमान के विवरण से भी प्राप्त होता है। सुलेमान का यह विवरण 851 ईस्वी में लिखा गया था। उसके अनुसार खमेर के राजा एक दिन अपने वजीर के साथ बैठा हुआ था। बातचीत में जावक के महाराज उसके वैभव तथा उसके अधीनस्थ देशों का जिक्र आ गया। उसे सुनकर खमेर के राजा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जावक के राजा का कटा हुआ सिर मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। पर यह बात जावक के महाराज को ज्ञात हुई तो उसने खमेर पर आक्रमण करने के लिए 1000 जहाज तैयार कराए और उन्हें सैनिकों से भरकर गुप्त रूप से हमला कर दिया। खमेर का राजा परास्त हो गया और उसके सिर को काटकर जावक ले जाया गया। अरब लेखकों को जावक या जावा के शैलेंद्र साम्राज्य ही अभिप्रेत था। यह पहले प्रतिपादित किया जा चुका है। इसमें संदेह नहीं कि अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए शैलेंद्र सम्राटों ने काम्बुज और चंपा पर भी आक्रमण किए थे और कुछ समय तक ये राज्य उसकी अधीनता में भी रहे थे। यद्यपि वे देर तक सुदूरवर्ती राज्यों पर अपना प्रभुत्व कायम नहीं रख सके, पर 8वीं सदी में स्वर्ण द्वीप तथा स्वर्ण भूमि में प्रायः सभी द्वीप एवं प्रदेश शैलेंद्र सम्राटों की अधीनता स्वीकार करते थे। इन जावक या शैलेंद्र महाराजाओं के विषय में अरब लेखकों ने जो महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं उनके उल्लेख हम इसी अध्याय में ऊपर कर चुके हैं। यहाँ इतना लिख देना ही पर्याप्त होगा कि अरब विवरणों के अनुसार जावक साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली एवं समृद्ध था। इब्न खुरदाद बह 844 ईस्वी ने लिखा है कि जावक का राजा महाराज कहता था, और उसकी दैनिक आमदनी 200 मन सोना थी। महाराज इस सोने को ठोस ईंटों के रूप में परिवर्तित करके जल में फेंक दिया करता था। ये वहीं सुरक्षित रहा करती थी क्योंकि महाराज का खजाना जल में ही था। सौदागर सुलेमान ने भी यही बात एक दूसरे ढंग में लिखी है। उसके अनुसार जावक के राजा के महल और समुद्र के बीच एक उथली झील थी। प्रतिदिन प्रातःकाल के समय राजा सोने की एक ठोस ईंट इस झील में फेंक दिया करता था। राजा की मृत्यु हो जाने पर इन सब ईंटों को पानी से निकालकर गिना जाता था और उनका वजन करके राजकीय बहियों में दर्ज कर दिया जाता था। फिर इस सोने को राज परिवार के सदस्यों, सेनापतियों, राजकीय गुलामों और अन्य कर्मचारियों में उनकी हैसियत के अनुसार बांट दिया जाता था और जो शेष बचता था उसे गरीबों को दे दिया जाता था। चीन के प्राचीन इतिहास ग्रंथों में सान फोत्सी नाम से जिस राज्य का उल्लेख है वह शैलेंद्र साम्राज्य ही था। सान फोत्सी के विषय में जो जानकारी चीन ग्रंथों से प्राप्त होती है उसका उल्लेख भी पहले किया जा चुका है। वस्तुतः दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास में शैलेंद्र साम्राज्य का निर्माण एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्षेत्र के विविध प्रदेशों तथा द्वीपों में जो बहुत से छोटे छोटे राज्य थे, शैलेंद्र राजाओं ने उन्हें एक साम्राज्य के अंतर्गत कर दिया था। जहाँ आज मलेशिया और इंडोनेशिया के राज्य हैं, प्रायः उन सब में इस साम्राज्य के कारण राजनीतिक एकता हो गई थी, जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि तथा सांस्कृतिक उन्नति में बहुत सहायता मिली थी। शैलेंद्र साम्राज्य की सामुद्रिक शक्ति भी बहुत अधिक थी और वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। शैलेंद्र राजाओं का महत्व इतना अधिक होते हुए भी उनका क्रमबद्ध इतिहास ज्ञात नहीं है। लिंगोर मलाया के अभिलेख से हमें विष्णु नाम के शैलेंद्र वंशी महाराज का परिचय मिलता है, जिसका काल 8वीं सदी के उत्तरार्ध 775 ईस्वी में था। काल सन जावा के अभिलेख में शैलेंद्र वंश के महाराज पणंगकरण का उल्लेख है, जिसने कि 778 ईस्वी में तारा के मंदिर का निर्माण कराया था। यह पणंगकरण महाराज विष्णु, जिसका उल्लेख लिओर के अभिलेख में है, का उत्तराधिकारी था। यह जावा का एक ऐसा पृथक शैलेंद्र वंशी राजा था जो श्री विजय के शैलेंद्र सम्राटों के प्रभुत्व को स्वीकार करता था, यह स्पष्ट नहीं है। संभवतः पणंगकरण का संबंध शैलेंद्र वंश की एक ऐसी शाखा के साथ था जो श्री विजय के शैलेंद्र वंश से भिन्न थी, पर शैलेंद्र साम्राज्य के उत्कर्ष काल में उसकी अधीनता को स्वीकार करती थी। जावा के मत्राम राज्य का विवरण लिखते हुए सोलो के एक अभिलेख पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें कि मत्राम जावा में के राजाओं की एक वंशावली भी दी गई है। इसमें संजय रकई मतराम श्री महाराज रकई पणंगकरण और उसके बाद के 7 राजाओं के नाम है। जावा के राजा संजय द्वारा कंबुज के देश की विजय की गई थी, यह अभी ऊपर लिखा जा चुका है। उसके बाद मतराम और फिर पणंगकरण जावा के राजा बने। संजय का काल 732 ईस्वी में था और पणंगकरण का 778 ईस्वी में, जो सर्वथा संगत है, पर पणंगकरण से कुछ समय पूर्व 775 ईस्वी में मलाया में शैलेंद्र वंशी महाराज विष्णु का शासन था। सोलो के अभिलेख में विष्णु का नाम नहीं है। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि जावा के संजय रकई मतराम और रकई पणंगकरण आदि राजा शैलेंद्र वंश के होते हुए शैलेंद्र सम्राटों के उस प्रधान शाखा के नहीं थे, जिसका प्रधान केंद्र श्री विजय में था, और सुमात्रा तथा मलाया जिसके सीधे शासन में थे। शैलेंद्र साम्राज्य के उत्कर्ष के समय 8वीं सदी में जावा के ये राजा, जो शैलेंद्र कुल के ही थे, श्री विजय के सम्राटों का प्रभुत्व स्वीकार करते थे, पर 9वीं सदी में इन्होंने श्री विजय के प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह कर अपने को स्वतंत्र कर लिया था। 9वीं सदी में जावा किस प्रकार श्री विजय के शैलेंद्र साम्राज्य से पृथक हुआ, इस पर अगले अध्याय में प्रकाश डाला जाएगा। शैलेंद्र वंश की मुख्य शाखा के राजा महाराज या राजाधिराज विष्णु का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इसका परिचय लिगोर के अभिलेख से मिलता है। केलूरक जावा के अभिलेख में शैलेंद्र वंश तिलक वैरीवर वीर रविमर्दन महाराज धरेंद्रनाथ द्वारा मंजूश्री की मूर्ति की प्रतिष्ठापित किए जाने का वर्णन है, और इस राजा के विषय में यह भी लिखा गया है कि उसने सब दिशाओं में अन्य राजाओं को परास्त किया था। यह अभिलेख 782 ईस्वी का है। अतः राजा धरिनेन्द्र को महाराज विष्णु के बाद का समझा जा सकता है। केलूरक के इस अभिलेख में श्री संग्राम धनंजय नाम के एक अन्य राजा का भी उल्लेख है। संग्राम धनंजय और धरिनेन्द्र में क्या संबंध थे, यह ज्ञात नहीं है। नालंदा के ताम्रपत्र में शैलवंश तिलक वीर वैरी मतना नुक्ता विधान राजा यवभूमिपाल और उसके पुत्र समरग्रवीर का उल्लेख है, जिसके पुत्र श्री बाल पुत्र देव ने नालंदा में एक बिहार का निर्माण कराया था। यह लेख सन 841 का है, अतः शैलेंद्र महाराज श्री बाल पुत्र देव का काल 9वीं सदी के मध्य भाग में रखा जा सकता है। इससे पूर्व समग्रवीर शैलेंद्र सम्राट का स्वामी था और उससे पहले यह भूमिपाल जो व्यक्ति के नाम भी हो सकता है और राजा का विशेषण भी, पर यह सब राजा धर्मेंद्र तथा विष्णु के बाद के थे, इसमें संदेह नहीं। श्री बालपुत्र देव के पश्चात जो अनेक राजा श्री विजय के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, उनमें से कुछ के नाम चोल अभिलेखों तथा कतिपय अन्य साधनों से ज्ञात होते हैं। इनका संबंध शैलेंद्र साम्राज्य के ह्रास काल के साथ है, अतः अगले प्रकरण में इसका उल्लेख किया जाएगा। चौथा, चोल राज्य से संघर्ष और शैलेंद्र साम्राज्य का पतन। 11वीं सदी में सुदूर दक्षिणी भारत के चोल वंशी राजा बड़े प्रतापी थे और उन्होंने दूर दूर तक विजय यात्राएं कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चोल साम्राज्य के विकास का प्रधान श्रेय राजराज प्रथम को है, जो 985 ईस्वी में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। दक्षिणी भारत के प्रायः सभी प्रदेशों को अपने अधीन कर राजराज प्रथम ने कलिंग की भी विजय की थी और मालदीव द्वीप समूह पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। राजराज द्वारा चोल साम्राज्य के विस्तार की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम 1012 से 1044 से जारी रखा और उत्तरी भारत पर आक्रमण कर बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। राजेंद्र की सेनाएं विजय यात्रा करती हुई गंगा तट तक पहुंच गई थी, जिसके कारण उसके गंगे कुंड की उपाधि भी धारण की थी। राजराज और राजेंद्र द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य की सामुद्रिक शक्ति भी बहुत अधिक थी। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी तट पर चोल साम्राज्य की स्थिति थी और उनके पूर्वी तट पर शैलेंद्र साम्राज्य की। जल शक्ति में दोनों ही साम्राज्य अत्यंत समृद्ध थे। इस दशा में यह स्वाभाविक था कि उनमें परस्पर संपर्क स्थापित हो। जिस समय राजराज प्रथम चोल साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए प्रयत्नशील था, तभी शैलेंद्र साम्राज्य के राज सिंहासन पर भी चूड़ा मणिवर्मन देव विराजमान था। इन दोनों सम्राटों में मैत्री संबंध की सत्ता थी, जिसका परिचय उस विशाल ताम्रपत्र द्वारा प्राप्त होता है जो इस समय लाइडन के कला भवन में है और लाइडन अभिलेख कहता है। इस अभिलेख में 21 ताम्रपत्र हैं और यह प्रधानतया संस्कृत में है, यद्यपि इसके कुछ अंश तमिल भाषा में भी हैं। लाइडन के इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कटाह के राजा चूड़ामणि वर्मन देव ने नागपट्टन नामक स्थान पर एक बौद्ध विहार का निर्माण प्रारंभ कराया था, पर इस विहार के पूरा होने से पहले ही राजा चूड़ामणि वर्मन देव की मृत्यु हो गई थी। उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी राजा श्री मार विजयो तुंग वर्मा ने अपने पिता द्वारा प्रारंभ कराए गए विहार को पूरा कराया और अपने पिता के नाम पर इस विहार का नाम चूड़ामणि वर्म देव विहार रखा। अपने राजकाल के 21वें वर्ष में चोल सम्राट राजराज ने इस विहार के लिए एक ग्राम दान में दिया था और बाद में उसके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल द्वारा इस दान की पुष्टि भी की गई थी। लाइडन के इस अभिलेख में राजा श्री मार विजयो तुंग वर्मदेव के साथ श्री विषयाधिपति और कटाहाधिपत्यमात्मनम विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं। अभिलेख के तमिल भाग में कटाह के स्थान पर कडारम आया है। कटाह और कडारम मलाया प्रायद्वीप के केड्डा या केडाह प्रदेश के प्राचीन नाम थे। श्री विषय से श्री विजय ही अभिप्रेत है, यह निर्विवाद है। श्री विजय के अधिपति और कटाह पर अपने प्रभुत्व का विस्तार करने वाले राजा श्री मार विजयो तुंग वर्मदेव को लाइडन अभिलेख में शैलेंद्र वंश संभूत भी कहा है, जिस सबसे इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि शैलेंद्र वंश के सम्राट चूड़ामणि वर्मदेव और श्री मार विजयो तुंग वर्मदेव चोल राजा राजराज के समकालीन थे और उनका इस चोल राजा के साथ घनिष्ठ मैत्री संबंध था। तभी उन्होंने चोल साम्राज्य के अंतर्गत नागपट्टन में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था और चोल राजा ने उसके लिए एक ग्राम दान में दिया था। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि शैलेंद्र वंश के इन दोनों राजाओं का उल्लेख चीनी ग्रंथों में भी मिलता है। 1003 ईस्वी में सान फोसी के राजा से ली चू ल वू नी फू म ती अ उ ह ने अपने दूत चीन भेजे थे और सन 1008 में राजा से रोमाल पी ने सान फोसी शैलेंद्र साम्राज्य के इन राजाओं ने चीनी नामों को लाइडन अभिलेख के श्री चूड़ामणि वर्मदेव और श्री मारवी ज्योतुंग वर्मदेव के साथ मिलाया गया है और स्पष्ट रूप से युक्ति संगत है। चोल अभिलेख के अनुसार भी इन राजाओं का काल 11वीं सदी के प्रारंभ भाग में ही था, पर शैलेंद्र और चोल साम्राज्यों में मैत्री संबंध देर तक कायम नहीं रहा। कुछ समय पश्चात उनमें युद्ध प्रारंभ हो गया और चोल सम्राट राजेंद्र द्वारा बंगाल की खाड़ी को पार कर समुद्र मार्ग से शैलेंद्र साम्राज्य पर आक्रमण किए गए। चोल राजेंद्र के अभिलेखों में इन आक्रमणों और समुद्र पार के प्रदेशों की विजय के स्पष्ट विवरण विद्यमान हैं। राजेंद्र चोल के शासनकाल के छठे वर्ष 1017 से 1018 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ एक अभिलेख तिरुवालांगाड़ू नामक स्थान से उपलब्ध हुआ है, जिसमें चोल राजा द्वारा कटाह का विजय का उल्लेख है। यह अभिलेख संस्कृत और तमिल दोनों में है और इसके एक संस्कृत श्लोक में समुद्र को पार कर कटाह को जीतने वाली और अन्य सब राजाओं को अपने सम्मुख झुकाने के लिए विवश करने वाली चोल सेनाओं के वीर कृत्यों का विवरण दिया गया है। राजेंद्र चोल के अन्य भी अनेक अभिलेख में कड़ारम कटाह की विजय का उल्लेख है, पर शैलेंद्र वंश के अधीनवर्ती समुद्र पार के प्रदेशों को जीतने का सुविस्तृत विवरण तंजोर के अभिलेख में दिया गया है, जिसे राजेंद्र चोल के राज्यकाल के 19वें वर्ष 1030 से 31 में उत्कीर्ण कराया गया था। उसके अनुसार राजेंद्र चोल ने उफनते हुए समुद्र में बहुत से जहाज कडारम के राजा संग्राम विजयोतुंग वर्मा के विरुद्ध भेजे थे, जिन्होंने कि इस राजा को उसकी सेना के हाथियों तथा खजाने के साथ बंदी बना लिया था। समुद्र के मार्ग से किए गए इस आक्रमण द्वारा जो प्रदेश राजेंद्र चोल के स्वत्व में आ गए थे, उनके नाम इस अभिलेख में इस प्रकार दिए गए हैं। श्री विजय पंचई सुमात्रा में, मलयूर मलायु या जाम्बी, मई रुंडीगम मलाया प्रायद्वीप में, इलंगोसेगम मलाया प्रायद्वीप में, माप पालगम का के स्थल डमरू मध्य के समीप, मेवी लिम्बम गम लिगोर के समीप, वलय पन्नंडरू पांडुरंग, तलय तक्कुल्लम तकुल्ला में, मा दरमालिगम मलाया प्रायद्वीप में, इलाम उरी देशम सुमात्रा के उत्तरी प्रदेश में, मानक कवारम निकोबार द्वीप तथा कटा या कडारम। चोल अभिलेखों में राजेंद्र द्वारा विजित समुद्र पार के जिन प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, वे कहाँ स्थित थे और वर्तमान समय में उनके नाम क्या हैं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन सब की स्थिति मलाया प्रायद्वीप सुमात्रा तथा उसके समीपवर्ती द्वीपों में थी। संभवतः ये सब श्री विजय के शैलेंद्र सम्राटों के अधीनस्थ राज्य थे और राजेंद्र चोल ने समुद्र पार अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए इन सबको अपना वंशवर्ती बना लिया था। तंजौर अभिलेख में संग्राम विजयोतुंग वर्मा को कडारम कटाह का राजा कहा गया है और श्री विजय को बड़े बड़े रत्नों से विभूषित द्वारों वाला नगर वर्णित किया गया है। संभवतः 11वीं सदी तक कटाह को शैलेंद्र साम्राज्य की द्वितीय राजधानी की स्थिति प्राप्त हो चुकी थी। कटाह केड्डा सदृश महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र का राजधानी के रूप में प्रयुक्त किया जाना स्वाभाविक ही था। यद्यपि चोल सम्राट राजेंद्र समुद्र पार के शैलेंद्र साम्राज्य को प्राप्त करने में समर्थ हुआ था, पर वह देर तक उसे अपनी अधीनता में नहीं रख सका। संभवतः वह शीघ्र ही स्वतंत्र हो गया था, क्योंकि चोल राजा वीर राजेंद्र 1063 से 70 को एक बार फिर कडारम कटाह पर आक्रमण कर उसे जीतने की आवश्यकता हुई थी। वीर राजेंद्र के एक अभिलेख में उस द्वारा कडारम की विजय का उल्लेख आया है, पर वीर राजेंद्र के लिए भी समुद्र पार के शैलेंद्र साम्राज्य पर शासन कर सकना सुगम नहीं था। वह उसके राजा से अधीनता स्वीकार करा के ही संतुष्ट हो गया और उसके राज उसे वापस लौटा दिए। अपने अभिलेख में वीर राजेंद्र ने लिखा है कि कडारम के राजा ने उसकी चरण पूजा की, जिस पर उसका राज उसे वापस दे दिया गया, पर शैलेंद्र और चोर राजाओं के संघर्ष का इससे भी अंत नहीं हो पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि वीर राजेंद्र की मृत्यु के पश्चात कटाह के शैलेंद्र राजा ने अपने को पुनः स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसके कारण चोल सम्राट को फिर उस पर आक्रमण करने की आवश्यकता हुई। वीर राजेंद्र का उत्तराधिकारी कुलोतुंग चोल 1070 से 1120 था। उसके भी एक अभिलेख में कटाह पर आक्रमण तथा उसके विनाश का उल्लेख है, पर इस चोल राजा के समय में शैलेंद्र और चोल साम्राज्यों में एक बार फिर मैत्री संबंध स्थापित हो गया था। इसका कारण संभवतः यह था कि चोल राजा को भारत में अपने पड़ोसी राज्यों के युद्धों से ही अवकाश नहीं मिलता था और वह कलिंग के युद्धों में बुरी तरह फंसा हुआ था। इस दशा में समुद्र पार के शैलेंद्र राज को अपनी अधीनता में रख सकना उसके लिए क्रियात्मक नहीं था। फूलो, तुम चोल और शैलेंद्र वंशी राजा के संबंध इस काल में कितने महत्वपूर्ण हो गए थे, यह लाइडन के छोटे अभिलेख से सूचित होता है। यह अभिलेख राजा राज प्रथम के उस अभिलेख से भिन्न है जिसमें 21 ताम्रपत्र हैं और जो इस समय लाइडन के कला भवन में होने के कारण लाइडन अभिलेख कहलाता है। कुलोत्तुंग चोल का यह अभिलेख जिसमें केवल 3 ताम्रपत्र हैं भी लाइडन के कला भवन में है। उसके अनुसार किडार कटाह के राजा ने अपने दूत का राज विद्याधर सामंत और अभिमानोत्तुंग सामंत द्वारा जो अनुरोध किया था उसे स्वीकार कर कुलोत्तुंग द्वारा शैलेंद्र चूड़ामणि वर्म विहार को दान में दिए गए गांव को करमुक्त कर दिया गया था। कुलोत्तुंग चोल के उत्तराधिकारी चोल राजाओं के जो अभिलेख उपलब्ध हैं उनमें न कहीं समुद्र पार के किडार आदि की विजयों का उल्लेख है और न कहीं किसी शैलेंद्र राजा का ही जिक्र है। उससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि कुलोत्तुंग के पश्चात किसी चोल राजा ने शैलेंद्र साम्राज्य पर आक्रमण करने का प्रयत्न नहीं किया। वस्तुतः इस समय चोल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होना प्रारंभ हो गई थी और उसके राजाओं के लिए यह संभव नहीं रहा था कि वे सुदूरवर्ती मलाया सुमात्रा आदि को अपने अधीनता में रख सके। 12वीं सदी में शैलेंद्र साम्राज्य की किस ढंग से प्रगति हुई यह सुनिश्चित रूप में प्रतिपादित कर सकना संभव नहीं है। श्री संग्राम विजयोत्तुंग वर्मा के बाद शैलेंद्र वंश के किसी भी राजा का नाम हमें ज्ञात नहीं है, पर चीनी ग्रंथों में सान होत्सी का और अरब विवरणों में जावक का उल्लेख उसके पश्चात भी आता है और इनसे श्री विजय का शैलेंद्र साम्राज्य ही विपरीत था, यह पहले निरूपित किया जा चुका है। 12वीं सदी में शैलेंद्र वंश हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। यद्यपि इस राजवंश द्वारा जिस सुविस्तृत साम्राज्य की स्थापना की गई थी उसकी सत्ता के प्रमाण हमारे सम्मुख आते रहते हैं। चीनी ग्रंथों के अनुसार सान फोत्सी के राजा सी ली म हालाश श्री महाराज ने अपना एक दूत मंडल चीन के सम्राट की सेवा में भेजा था। इसी प्रकार 1178 में सान फोत्सी से एक अन्य दूत मंडल चीन गया था। 1225 ईस्वी के लगभग चाउ जू कुआ नाम के एक चीनी राज पदाधिकारी ने सान फोत्सी के संबंध में यह लिखा था कि यह एक शक्तिशाली राज की राजधानी तथा व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था क्योंकि मलक्का का जल डमरूमद उसके प्रभुत्व में था। अतः पूर्वी और पश्चिमी देशों के पारस्परिक व्यापार का नियंत्रण करने का यह स्थिति में था। चाउ जू कुआ ने 15 ऐसे राज्यों के नाम दिए हैं जो सान फोत्सी की अधीनता स्वीकार करते थे। प्रायशः ये राज्य मलाया प्रायद्वीप में थे, यद्यपि इनमें से कुछ की स्थिति सुमात्रा और जावा में भी थी। चाउ जू कुआ की सूची में एक नाम सीलन भी है जिसे सीलोन या श्रीलंका के साथ मिलाया गया है। लंका के पुराने इतिहास चल्लू वंश से हमें ज्ञात है कि जावक सान फोत्सी ने राजा चंद्रभानु के सिलोन पर आक्रमण कर उसे कुछ समय के लिए उसे अधीन कर लिया था। अतः चाउ जू कुआ ने सान फोत्सी की अधीनता में विद्यमान जिन 15 राज्यों का उल्लेख किया है उन्हें इस शक्तिशाली साम्राज्य के अंतर्गत मानना असंगत नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि 13वीं सदी के प्रारंभ काल में भी सान फोत्सी या जावक एक शक्तिशाली एवं समृद्ध राज्य था। मलाया प्रायद्वीप में चैया नामक स्थान पर एक अभिलेख उपलब्ध हुआ है जो 1183 ईस्वी का है। इस अभिलेख में महाराजा श्री मत्त्रयलोक के राज मौली भूषण वर्मदेव नाम के एक राजा का उल्लेख है क्योंकि शैलेंद्र वंश के राजाओं के नामों में प्रायः वर्मदेव आया करता था। अतः यह कल्पना कर सकनी असंगत नहीं होगे कि त्रैलोक के राज मौली भूषण वर्मदेव का भी शैलेंद्र वंश के साथ संबंध था और संभवतः वह चूड़ामणि वर्मदेव का ही अन्यतम वंशज था। चैया के अभिलेख में उल्लिखित इस राजा को शैलेंद्र वंशी मान लिया जाए तो यह स्वीकार करना होगा कि चीनी ग्रंथों में सान फोत्सी के जिस शक्तिशाली व समृद्ध राज का वर्णन है 12वीं सदी के अंत तक भी वह शैलेंद्र वंश का शासन विद्यमान था। सान फोत्सी के रूप में स्वर्णद्वीप मलेशिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में 13वीं सदी तक भी एक शक्तिशाली राज की सत्ता थी जिसके राजा चंद्रभानु ने 1236 और 1256 ईस्वी में श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इन आक्रमणों का जो वर्पन चुल्लु वंश में मिलता है उस पर इस अध्याय में ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। 11वीं सदी में चोल सम्राट राजेंद्र ने समुद्र पार के जिस राज्य को आक्रांत कर विनष्ट किया था वह 13वीं सदी में इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसका राजा श्रीलंका पर आक्रमण कर सका था, पर संभवतः श्रीलंका पर आक्रमण करने में चंद्रभानु ने अनुचित साहस से काम लिया था। इस आक्रमण के कारण उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। जिससे लाभ उठाकर पांड्य देश के राजा जटावर्मन वीर पांड्य ने उस पर हमला कर दिया था और उसे परास्त कर मौत के घाट उतार दिया। 1264 ईस्वी था। 1264 के पश्चात सानफोसी जावक की असली विजय का तेजी से पतन होने लगा। पांड्य आक्रमण के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जावा के राजा कृतनगर ने उससे लाभ उठाया। मलाया प्रायद्वीप पर आक्रमण कर उससे ने उभले पहंग को जीत लिया और फिर मलयू जाम्बी को अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। ये दोनों राज्य पहले सानफोसी के अधीन थे। मलाया पर कृतनगर का प्रभुत्व देर तक कायम नहीं रहा, पर मलयू जाम्बी के जिस राज्य पर से सानफोसी के प्रभुत्व का अंत राजा कृतनगर द्वारा किया गया था, वह अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने में समर्थ रहा और शीघ्र ही वह सानफोसी का प्रतिद्वंद्वी बन गया। इसी समय 13वीं सदी के अंतिम भाग में सियाम के थाई लोगों ने भी उत्तर की ओर से मलाया प्रायद्वीप पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए थे। मलायू जावा और सियाम के बीच में पीस कर सानफोसी की शक्ति निरंतर छीन होती गई और वह एक स्थानीय राज्य मात्र रह गया। इस स्थिति में यह राज्य 1377 ईस्वी तक कायम रहा, जबकि जावा के ने एक बार फिर उसे आक्रांत किया और उसे बुरी तरह नष्ट किया। इस प्रकार श्री विजय सानफोसी के उस शक्तिशाली राज का अंत हुआ जिसकी स्थापना शैलेंद्र वंश के राजाओं द्वारा की गई थी। शैलेंद्र साम्राज्य के पतन का विवरण देते हुए दो अन्य बातों का उल्लेख करना भी आवश्यक है। 8वीं सदी तक जावा भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत था, पर बाद में वहाँ ऐसे राज्यों की स्थापना हुई जो न केवल श्री विजय की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे अपितु उसके विरुद्ध संघर्ष में भी तत्पर रहते थे। अगले अध्याय में हम जावा के इस इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। यह ऊपर लिखा गया है कि संग्राम विजयो तुंग वर्मा के बाद शैलेंद्र वंश के किसी राजा का सुनिश्चित रूप से पता नहीं मिलता। श्रीलंका पर सानफोसी या जावक के जिस राजा चंद्रभानु ने आक्रमण किया था, चैया के एक अभिलेख में उसे कुल को कमल से प्रादुर्भूत कहा गया है और साथ ही ताम्रलिंग का अधिपति भी। तम मलिंग उन 15 राज्यों में एक है जिनका उल्लेख चाउ जुकुआ ने सानफोसी के अधीनस्थ राज्यों के रूप में किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रभानु इस तन मलिंग या ताम्र लिंग का राजा था और उसने सानफोसी से श्री विजय के शैलेंद्र वंशी राजाओं के विरुद्ध विद्रोह कर अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था और स्वर्ण द्वीप के क्षेत्र में वहीं सर्वप्रधान स्थिति को प्राप्त कर गया था।